ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे एक मिनट के लिए। ध्यान को लेकर आएंगे भ्रिकुटी के बीच। खुद को देखेंगे, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। एक संकल्प करेंगे और उसे होल्ड करेंगे, साथ साथ देखेंगे चमकता हुआ सितारा। और एक संकल्प करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। संपूर्ण पवित्र आत्मा, इसको फील करें। कंप्लीट प्योरिटी, कोई चीज कंप्लीट प्योर होती है तो कैसी होती है? कैसी फील करती है कंप्लीट प्योरिटी? मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र, कंप्लीट प्योरिटी। कोई पुरानी बातें नहीं, किसी के लिए कोई मैल नहीं। खुद से कोई शिकायत नहीं, कंप्लीट प्योरिटी, बेदाग, स्वच्छ। अजर अमर अविनाशी आत्मा, अपने जीवन को देखें, अपनों के जीवन को देखें। हम सब कुछ प्लान्स बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये करेंगे, फिर वो बनेंगे। खुद के लिए भी लिखते हैं, परिवार के लिए भी लिखते हैं, देश के लिए भी लिखते हैं। कुछ चीजें जैसे हमने सोची थी वैसे ही होती है, और कुछ बिल्कुल नहीं सोचा था वैसे हो जाता है। पर बहुत विश्वास करते हैं, वो ही धोखा दे जाता है। किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो सहयोगी बन जाता है। ये सब कैसे होता है? अपने भाग्य को देखें। परिवार के भाग्य को देखें। क्या कोई ऐसी चीज है जो भाग्य में बदलना चाहते हैं, जो स्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते हैं? ओम शांति। बचपन से आत्मा शब्द बहुत बार सुना है, लेकिन वो एक शब्द की तरह ही हम सुनते हैं, लेकिन उस स्वरूप से जीना कि मैं आत्मा हूं और जिनसे हम बात कर रहे हैं वो भी कौन है, वो भी कौन है, बोले वो भी कौन है। अभी तक हम किससे इंटरैक्ट करते हैं? हम रिश्तों से इंटरैक्ट करते हैं, हम रोल से इंटरैक्ट करते हैं, हम पोजीशन से इंटरैक्ट करते हैं। वो सब तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, रिश्ता इम्पोर्टेंट है, रोल और पोजीशन इम्पोर्टेंट है, प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमें ये याद ही नहीं रहा कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। जब मैं आत्मा आत्मा से बात करती हूँ, आत्मा के संपर्क में आती हूँ, तो वाइब्रेशन कैसी होंगी? और जब सिर्फ रोल और पोजीशन के संपर्क में आएंगे तो वाइब्रेशन कैसी होगी? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? यस, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? एक, आप अपने एकेडमी में जा रहे हैं या कोई ऑफिस में जा रहे हैं, आप 4-5 मिनट में 3-4 अलग अलग रोल से मिलेंगे। कोई गेट पे खड़ा होगा गेट खोलने के लिए, कोई अंदर मिलेगा, कोई सीनियर पोजीशन वाला रोल मिलेगा। 3-4 मिनट में हम 3-4 लोगों को मिल लेंगे जो 3-4 अलग अलग रोल्स और पोजीशन पे हैं। हम एक हैं, हम 4 लोगों से मिलते हैं जो 4 अलग अलग पोजीशंस पे हैं, उनसे मिलते हुए क्या हम थोड़े से चेंज होते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। कौन कौन को लगता है हम थोड़ा सा चेंज होते हैं? हाँ, थोड़ा सा चेंज होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता जाता है। देखने का नजरिया, बात करने का तरीका, बॉडी का पोस्चर, सब चेंज होने लग जाता है थोड़ा सा। क्यों हम किसको मिल रहे हैं, क्यों चेंज होते हैं 4 बार? क्योंकि हम 4 अलग अलग पोजीशन, 4 अलग अलग रोल को मिल रहे हैं। किसी से हम अपने आप को नीचा फील करते हैं और किसी से हम अपने आप को ऊंचा फील करते हैं, क्योंकि रोल तो अलग अलग ही है। लेकिन रोल कॉन्शियसनेस से जीते 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 हमारा देह अभिमान, मतलब रोल का अभिमान बढ़ता जाता है, और ये रोल का अभिमान अहंकार का रूप लेता है, ईगो। ईगो सिर्फ ये नहीं है कि किसी से सुपीरियर फील करना, एक ईगो है, इन्फीरियर फील करना भी ईगो ही है। एक डेफिनेशन लिखेंगे, इस पर फिर वर्क करते जाएंगे। ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माइसेल्फ। ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माइसेल्फ। ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माइसेल्फ। रॉन्ग इमेज मतलब जो मैं नहीं हूं वो खुद को समझना, वो सब कुछ मेरा है, वो मैं नहीं हूं। लेकिन हमने मैं को किससे जोड़ दिया? मेरे से जोड़ दिया, और मेरे को ही मैं कहना शुरू कर दिया। मैं बेटा हो, मैं पति हो, मैं पत्नी हो, मैं माँ हूं, मैं सो एंड सो रोल एंड पोजिशन हूँ, मैं रिलीजन हूँ, मैं नेशनैलिटी हूँ, हमने हर चीज को मैं कह दिया। वो मैं नहीं था, वो मेरा था। और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं ब्यूटीफुल एनर्जी हूँ। अब सिर्फ एक मिनट के लिए फिर से उन चार लोगों से मिलें, फिर से अपने आप को देखें, 1, 2, 3, चार लोगों से मिलें, लेकिन सिर्फ छोटा सा एक अभ्यास करें कि चार लोगों से मिलते समय सिर्फ इसको देखें कि मैं आत्मा उस आत्मा से मिल रही हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल लाइट उस लाइट से मिल रही हूँ, और चार लोगों को मिले। अब क्या हम चार बार चेंज होंगे? क्या हम चार बार चेंज होंगे? नहीं, चेंज होना चाहिए। अगर हम चार बार चेंज हो जाएं, तो उसमें से हमारी एक्चुअल नेचर कौन सी है? हमारी एक्चुअल नेचर कौन सी है वो तो पता ही नहीं चलता है। तो दो वर्ड्स हैं, लिख लेते हैं। एक है रिस्पेक्ट, दूसरा है रिगार्ड। रिगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रोल। एक है रिस्पेक्ट, दूसरा है रिगार्ड। रिगार्ड मतलब जो हमारे से उम्र में बड़े हैं, जो हमारे से अनुभव में बड़े हैं, जो हमारे से औधे में बड़े हैं, उनका रिगार्ड। रिगार्ड कैसे रखा जाता है? हम कुछ ना कुछ बाह्य करते हैं रिगार्ड के लिए। जैसे कोई हमारे से रिश्ते में या औधे या आयु में बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं? उनके सामने हम झुकते हैं, बड़ों के सामने हम पैर छूते हैं, ये हम रिगार्ड दे रहे हैं। किसी के लिए हम दरवाजा खोलते हैं, किसी के लिए हम गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं, किसी के लिए हम नहीं खोलते हैं, ये किसके अनुसार हम कर रहे हैं? ये हम रिगार्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रोल। आपकी फील्ड में आपके सीनियर्स हैं, आप किसी के सामने एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं, किसी को सल्यूट करते हैं, ये रिगार्ड फॉर द रोल है। लेकिन मुझे ये भी आता है कि मैं किसी के लिए एकदम स्ट्रेट खड़े होकर सल्यूट कर लूं, लेकिन अंदर मुझे उनसे कोई बात की नाराजगी है, तो मैं उनके लिए अंदर बात अच्छा नहीं सोच रही। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता? इज इट पॉसिबल कि किसी के मैं पैर छू रही हूं, लेकिन मुझे उनकी किसी बात से बहुत दर्द हुआ है, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है? ऐसा हो सकता है? राइट। तो रिगार्ड आउटर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में। ये रिगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आउटर है, ये मिले औधे उम्र रिश्ते के अनुसार। रिस्पेक्ट अर्थात उनके प्रति मेरी सोच, मेरी कॉन्शियसनेस। तो रिगार्ड सबके लिए अलग अलग होगा, रिस्पेक्ट सबके लिए, रिस्पेक्ट सबके लिए कैसे होगी? रिगार्ड अलग अलग होगा। किसी के आप पैर छुएंगे, दूसरे के नहीं छुएंगे, कोई आपके पैर छुएगा। किसी के लिए आप दरवाजा खोलेंगे, कोई आपके लिए दरवाजा खोलेगा। ये सब रोल के ऊपर बना हुआ है। रिस्पेक्ट किसके लिए? रिगार्ड अलग अलग होगा, रिस्पेक्ट सबके लिए एक जैसा। राइट है? तो अब आप लिख लिए, रिगार्ड फॉर द रोल, रिस्पेक्ट फॉर द सोल। रिगार्ड फॉर द रोल, रिस्पेक्ट फॉर द सोल। रिगार्ड बदलता रहेगा, रिस्पेक्ट हमेशा एक जैसा। तो सोल कॉन्शियसनेस, क्यों वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम अब खुद को जानेंगे, तभी दूसरे को जानना शुरू करेंगे। तो किसी के लिए हम झुक रहे हैं, कोई हमारे लिए झुक रहा है शारीरिक रूप से, वो रिगार्ड है, लेकिन अंदर से सोचना ये मेरे से छोटा है या ये मेरे से बड़ा है, ये डिसरिस्पेक्ट है। जैसे एक फिल्म होती है, एक्टर अलग अलग हैं, उनका रोल अलग अलग है, उनका स्क्रिप्ट अलग अलग है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जो एक सीनियर का रोल प्ले कर रहा हो, उससे अच्छा जो जूनियर का रोल प्ले कर रहा हो, वो एक्टर ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, लेकिन उस मूवी में जो सीनियर का रोल प्ले कर रहा है वो अलग है, वो रोल है, लेकिन एक्टर कैसा है? तो आत्मा एक्टर है, और जो हम कर रहे हैं वो हमारा रोल है। हम रोल पे इतना फोकस के एक्टर की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, और एक्टर का ईगो फिर क्या होता गया? एक्टर का ईगो क्या होता गया? बढ़ता गया। अब छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, सबसे मिलेंगे, लेकिन सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट, सम्मान और प्यार, औधे अनुसार चेंज नहीं होना, औधे अनुसार चेंज नहीं होना, उनके स्टेटस अनुसार चेंज नहीं होना। कोई है जो आपके घर की सफाई करने आ रहे हैं, वो सिर्फ एक रोल है, लेकिन वो कौन है? वो कौन है? वो भी मेरी तरह इक्वल प्योर ब्यूटीफुल आत्मा। कोई आ रहा है जो आपकी गाड़ी चला रहा है, वो सिर्फ एक रोल है, लेकिन वो कौन है? मेरी तरह इक्वल प्योर ब्यूटीफुल आत्मा। तो रोल्स ऊंचे नीचे बड़े छोटे हो सकते हैं, एक्टर सारे सेम इक्वल प्योर ब्यूटीफुल। जब ये स्मृति रहेगी तो अहंकार क्या होता जाएगा? अहंकार क्या होता जाएगा? डाउन डाउन डाउन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिश्ते कैसे होते जाएंगे? चलो एक मिनट आंख बंद करो, सारा दिन किससे इंटरेक्ट करते हो, एक सेकंड के लिए स्कैन करो उनको, सुबह से लेकर रात तक कितने लोगों से मिलते हैं, घर पे, ऑफिस में, सब जगह कितने 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 लोग, सड़क पर कहीं गए वहां पर इतने लोगों से मिलते हैं, सिर्फ सबको देखते हुए देखें कि एक्टर तो ये प्योर ब्यूटीफुल आत्मा ब्रिकुटी के बीच चमकता सितारा, बाकी तो सिर्फ रोल है। आज से हम रोल टू रोल नहीं, हम सोल टू सोल कनेक्ट करना शुरू करेंगे। कर सकते हैं इक्वली प्यार से बात सबसे? यस? या ये तो छोटा है तो इसको ऐसे जोर से बोल दिया, वो तो बड़े हैं उनके आगे ऐसे हो गए? नहीं, दोनों ईगो है, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मैं बॉडी हूं वो रॉन्ग इमेज था, मैं रिश्ता हूं वो रॉन्ग इमेज था, वो मेरा रिश्ता है, मैं पोजिशन हूं वो भी रॉन्ग इमेज था, बाकी सब कुछ जो मेरा है उसको मैं समझा तो उसमें ईगो है। तो राजयोग अर्थात ईगो कॉन्शियसनेस से शिफ्ट होकर सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति तक पहुंचना। एंड जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा की प्योरिटी एंड पावर बढ़ती जाएगी। जितना ईगो होता है तो सोल पावर क्या होती जाती है? सोल पावर क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो दो वर्ड्स हैं लिखेंगे, अभिमान और अपमान, अभिमान और अपमान। तो जितना अभिमान होता है ना, तो अपमान जल्दी और ज्यादा फील होता है। अभिमान और अपमान, मुझसे ऐसा कहा, मुझसे, ये मुझसे जब हम ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वो रोल कॉन्शियस है। किस किस के बच्चे हैं हाथ उठा? वो बच्चे भी कौन है? वो बच्चे भी कौन है? वो भी कौन है? आप उनसे बड़े हैं? आप उनसे बड़े हैं? आप उनसे बड़े हैं? सिस्टर, बच्चा, आप खड़े होंगे एक मिनट? मम्मी पापा बैठे हुए ना साथ में? ओके, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? 11। आप सब अपनी एज बताएं, सब लोग शाउट आउट, हाउ ओल्ड आर यू? शी इज 11। आप बोले अपनी, सब लोग बोले अपनी एज। हाँ, अब ये 40, 50, 11, 20 किसकी एज है? बॉडी की। हाउ ओल्ड आर यू? डोंट नो। वेरी गुड, डोंट नो। अच्छा, आप पापा मम्मी खड़े हो जाएं जरा, ठीक है? आपकी एज 40। आपकी? हाँ, 34। ओके, 40, 11, 34, तीन खड़े हैं। 40, 11, 34 किसकी एज है ये 40, 11, 34? बॉडी की। क्लियर हो गई? बॉडी मतलब मेरा कपड़ा। इट्स लाइक जो आपने जो कपड़ा पहना है, अगर आपका कपड़ा नया है तो आप छोटे हो गए, और अगर आपका कपड़ा पुराना है तो आप बड़े हो गए। ऐसा होता है? नहीं, हम कहेंगे ये तो कपड़ा है। सिमिलरली ये शरीर भी कपड़ा है। अब ये जो 11 ईयर ओल्ड बॉडी में सोल है, ये इससे पहले कहां थी? इस बॉडी में आने से पहले कहां थे? कहां थी? आत्मा अजर अमर अविनाशी। एक जगह मृत्यु होगी, मृत्यु हुई मतलब एक कपड़ा क्या हो गया? फट गया, खराब हो गया। तो हमें उस कपड़े को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। लेकिन जैसे ही हम इस कपड़े को छोड़ेंगे, आत्मा तो फिनिश नहीं होती, आत्मा तो फिनिश नहीं होती, एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा फिनिश नहीं होती, लेकिन ड्रेस खत्म हो गई, तो फिर आत्मा को क्या करना पड़ेगा? आत्मा को नई ड्रेस लेनी पड़ेगी। तो ये जो सोल है, जो इस समय ये 11 ईयर ओल्ड कॉस्ट्यूम के अंदर है, ये कहीं से आई, राइट? उससे पहले वो एक डिफरेंट ड्रेस में थी। अब सपोज वो ड्रेस की एज 100 थी और ये ड्रेस की एज 11 है, तो इस सोल की एज कितनी हो गई? सिर्फ इतने में 100 प्लस 11 कितना हो गया? 111। वो 40, वो 34, वो 111, कौन बड़ा हो गया? 40, वो 34, वो 111, कौन बड़ा हो गया? बहुत हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इसीलिए हम ईगो से बढ़ती शक्ति क्या होती गई? ईगो इतना बढ़ता गया, आत्मा की शक्ति क्या? ये तो बच्चा है, तो बच्चे के साथ तो कैसे भी बात कर सकते हैं, बच्चे को तो डांट भी सकते हैं। और जब शरीर और थोड़ा छोटा होता है तो बच्चे पे हाथ भी उठा लेते हैं। फिर शरीर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, कहते बड़ा हो गया, अपने हाथ उठा सकते। हम किसको बड़ा होता हुआ देख रहे हैं? सिर्फ ये सोल इस शरीर में आने से पहले 100 साल के शरीर में थी, तब ये दोनों उसके पैर छूते थे। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना? सो आज से ये नहीं है कि ये रोल नहीं प्ले करना, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करना है। इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद इनका रोल है उसको सिखाना, इनका रोल है उसको डिसिप्लिन करना, इसका रोल है उसका कहना मानना। लेकिन याद रहे, हम किससे बात कर रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं? उससे सारे रिश्तों में जीने का तरीका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अब एक मिनट आंख बंद करो, घर भी होकर आओ। घर में देखो सिर्फ कौन कौन है। कोई 90 ईयर ओल्ड बॉडी के अंदर होगा, कोई 9 ईयर ओल्ड बॉडी के अंदर होगा, कोई आपका इक्वल होगा, कोई भाई बहन का रिश्ता प्ले कर रहा होगा, कोई हस्बैंड वाइफ का प्ले कर रहा होगा। ये सिर्फ रिश्ते हैं, ये सिर्फ शरीर की एज है, उस चोले की कपड़े की एज है जो पहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुभव है, इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हरेक इक्वल है, हरेक इक्वल है। अब सबको देखते हुए जहां तिलक लगाते हैं वहां देखें एक चमकता हुआ सितारा। ये और मैं इक्वल है, ये और मैं इक्वल है, ये और मैं इक्वल है। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी सोल, रिगार्ड फॉर द रोल, रिस्पेक्ट फॉर द सोल। तो आज से शरीर की आयु छोटी हो बड़ी हो, रोल छोटा हो बड़ा हो, हम सबके साथ कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे सबके साथ? एवरीबडी, कैसे रहेंगे सबके साथ? इक्वल स्नेह और सम्मान, लव एंड रिस्पेक्ट इक्वल फॉर ऑल, कॉन्शियसनेस इक्वल फॉर ऑल। इतनी छोटी सी प्रैक्टिस ईगो को क्या करती जाएगी? ठीक है, इजी है ये एवरीबडी, इजी। कौन कौन प्रैक्टिस करेगा इसको? और इसके लिए कौन सी प्रैक्टिस करनी है? मैं आत्मा, बस ये प्रैक्टिस करते जाना है। मैं आत्मा, मैं आत्मा। अभी तक आत्मा सिर्फ सब सिर्फ तभी सुना था जब कोई देह को त्याग करता था और हम अंतिम संस्कार में जाते थे तो सुनते थे आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कोई भूत की पिक्चर देखते रहते आत्मा भटक रही है, लेकिन मैं आत्मा हूं ये कभी नहीं प्रैक्टिस किया, राइट? आज से ये प्रैक्टिस। तो डेथ किसकी होती है, मृत्यु किसकी होती है, राइट? और हमारी एज कितनी है फिर, हमारी एज कितनी है फिर? अगर आपसे कोई पूछे आपकी एज क्या है, बोलना मेरी बॉडी की एज 50 है, मेरी एजलेस, इटर्नल आत्मा, अजर अमर अविनाशी इटर्नल एनर्जी, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इटर्नल अजर अमर अविनाशी। शरीर 5 तत्वों का बना, आज है कल खत्म हो जाएगा। मेरी जर्नी इस शरीर के अंदर सीमित नहीं है। मेरी जर्नी कितनी लंबी है, मेरी जर्नी कितनी लंबी है, बहुत लंबी है। एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरा लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे। अब इधर हाथ रखें एक बार, यहां आत्मा रहती है ना, अंदर, ऊपर बाहर नहीं है, इधर अंदर, इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। एक मिनट के लिए विजुअलाइज करें, आत्मा को बाहर निकालें ऐसा, ठीक है? निकल गए, शरीर छोड़ दिया, पीछे मुड़ के देखें क्या क्या पीछे छूट के जाता है, क्या क्या पीछे छूटता है जब हम शरीर छोड़ते हैं, बोले एक बार सारे, क्या छूटता है पीछे? शरीर छोड़ता है, पहले शरीर छूटता है सबसे पहले, और क्या छूटता है? परिवार छूट, क्या छूटता है? धन संपत्ति, औधा, पढ़ाई भी छूट जाती है। अब वो बच्चा देखो नए नए कॉस्ट्यूम में आके फिर से ए फॉर एप्पल सीखा होगा, पढ़ाई भी साथ में नहीं जाती है। अभी हम कितना भी पढ़ लें, शरीर छूटा, फिनिश्ड, फिर से गए, फिर से नए से स्क्रैच करें। क्या हमारे साथ जाता है? सिर्फ दो चीजें, अब लिख लो उसको बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में, दो चीजें ही परमानेंट हैं, बाकी सब छूट जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म हैं, और दो चीजें लॉन्ग टर्म हैं, और वो दो चीजें हैं मेरे संस्कार और मेरे कर्म, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। मतलब मेरे मतलब रोल के नहीं, मुझ आत्मा के संस्कार और कर्म। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर का ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार तो बहुत बड़ी प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की सेवा करते हैं वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक दिन वो सब छूट जाता है, एक क्षण में छूटता है, लेकिन मेरे संस्कार और कर्म पीछे नहीं छूटते हैं, वो मेरे साथ जाते हैं। तो अब इसको देखें, यहां से आत्मा निकलेगी, ये सब पीछे रह जाएंगे, इवन जो बातें होंगी ना सबके साथ वो भी पीछे रह जाएंगे, किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, ये सब पीछे रह जाएगा। लेकिन जब वो सब हुआ, मैंने क्या रिकॉर्ड किया यहां, मैंने यहां क्या रिकॉर्ड किया, वो मुझे आत्मा पर चला जाएगा। तो आत्मा को एक सीडी की तरह देखें, जिसपे सारा दिन रिकॉर्डिंग होती जा रही है। किस चीज की रिकॉर्डिंग होती जा रही है, किस चीज की रिकॉर्डिंग होती जा रही है? वो भैया कहां गए जिनसे कल मैंने गलत तरह से बात की थी, कहाँ गए वो, हॉल में थे? हाँ, आप खड़े हो जाएं एक मिनट। हाँ, तो कल मैंने क्या किया, सबके सामने इनसे गलत तरह से बात की ना, ये मेरा कर्म था, राइट? मैंने जो किया वो किस पे रिकॉर्ड होगा, मैंने जो किया वो किस पे रिकॉर्ड होगा, वो मुझ पर रिकॉर्ड होगा। उन पर क्या रिकॉर्ड होगा, मैंने जो बोला वो मुझ पर रिकॉर्ड होगा, उन पर क्या रिकॉर्ड होगा, जो मैंने बोला उनके बारे में क्या वो उन पर रिकॉर्ड होगा, नहीं रिकॉर्ड होगा। मैंने उनके बारे में बोला, नहीं रिकॉर्ड होगा उन पर, तो फिर क्या रिकॉर्ड होगा? अब इसको पकड़ लें, मैंने जो किया, मैंने जो बोला वो मुझ पर रिकॉर्ड होगा, मैंने जो किया उसके बारे में उन्होंने कैसा सोचा वो उन पर रिकॉर्ड होगा, मैंने जो किया उससे मेरा भाग्य बनेगा, मैंने जो किया उससे उनका भाग्य नहीं बनेगा, लेकिन मैंने जो किया उसके बारे में उन्होंने कैसा सोचा और वैसा सोचकर फिर उन्होंने क्या किया उससे उनका भाग्य बनेगा। तो सारा दिन में लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। हम कहते हैं उसने मेरा भाग्य बिगाड़ दिया, उसने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम लाया, उसने, कोई नहीं कर सकता, कोई मेरे भाग्य को नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ एक जना कर सकता है, सिर्फ एक जना कर सकता है, कौन? खुद। और कोई मेरे भाग्य को बना भी नहीं सकता, वो भी एक ही जना कर सकता है, सिर्फ मैं खुद। लेकिन हमें आदत पड़ी थी ना उंगली बाहर रखने की, तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम उंगली यहां रखते थे और बड़ी चीजों के लिए उंगली कहां रख देते थे, किस पे रखते थे, ऊपर। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। सिर्फ एक पर ही उंगली नहीं रखी कभी, सिर्फ एक पर ही उंगली नहीं रखी, इस पे रखी, इस पे रखी, इस पे रखी, अच्छे के लिए भी रखी, जो नहीं अच्छा था उसके लिए भी रखी, उस पर भी उंगली रखी, अच्छे के लिए भी रखी, जो अच्छा नहीं था उसके लिए भी रखी, सिर्फ एक पर उंगली नहीं रखी। और राजयोग मतलब सिर्फ एक पर ही उंगली रखना है, सिर्फ एक पर ही उंगली रखना है। और जब हम एक पर उंगली रखते हैं, मतलब एक पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आते हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सारी पावर भी किसके पास आ जाती है, सारी पावर भी किसके पास आ जाती है, एक के पास आ जाती है। फिर उस पावर को ठीक से यूज करना सीखना है। तो मैं आत्मा हूं, ये एक लाइन पूरा जीवन जीने का तरीका चेंज कर देती है। रोल कॉन्शियसनेस की बजाय कैसे इंटरेक्शन में आएंगे, सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, बहुत बार रिश्तों में हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये ऐसे क्यों, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है या नहीं, थॉट्स आती है ना बहुत सारी। हम कहते हैं बेटा ऐसे थोड़ी होता है, बहन ऐसे थोड़ी होती है, पत्नी ऐसे थोड़ी होती है, माँ ऐसे थोड़ी होती है, टीचर ऐसा थोड़ी होता है। फिर अपने जो रोल्स पोजिशंस प्ले करते हैं, हम कहते हैं ये वाला रोल ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सामने वाला एक रोल नहीं है, सामने वाला एक सोल है जो उस रोल को प्ले कर रही है। और एक्टर रोल को किस आधार से प्ले करता है, एक ही मूवी हो, एक ही टीवी सीरियल हो, एक ही रोल अलग अलग एक्टर्स प्ले कर सकते हैं ना, कई बार होता है ना सेम एक्टर अलग अलग सेम रोल में आते हैं, लेकिन क्या वो उसी रोल को एक ही तरह निभाते हैं, क्यों, रोल तो वही है, स्क्रिप्ट तो वही है, एक्टिंग उनको एक जैसी करनी चाहिए थी, पर चेंज क्यों हो जाती है, क्या आता है उसके अंदर, क्या आता है, रोल किस आधार से प्ले किया जाएगा, सोल के संस्कार के हिसाब से, सोल के व्यक्तित्व पर्सनालिटी के हिसाब से। तो रोल वही होगा उस सीरियल में। कई बार ये जो लंबे सीरियल होते हैं, इसमें होता है ना एक जना बहुत टाइम प्ले करता है, फिर उसका कुछ चेंज हो जाता है, वो छोड़ देता है, तो वो डायरेक्टर उसी रोल में किसी और एक्टर को ले आता है, तो हम कहते हैं नहीं वो पहले वाला बेटर करते थे या ये दूसरा वाला बेटर करते हैं। रोल तो सेम है, स्क्रिप्ट तो सेम है, क्या चेंज हुआ, एक्टर चेंज हुआ, तो एक्टर के संस्कार, एक्टर का स्वभाव, एक्टर की पर्सनालिटी उस रोल में आएंगे। हम लोगों को रोल की तरह देखते हैं और कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चा ऐसे नहीं करता, माता पिता ऐसे नहीं होते, भाई ऐसा नहीं करता, वो रोल नहीं है, वो सोल प्लेइंग अ रोल है। और अब अगर हमें उनको समझना है तो हमें उनकी जर्नी को समझना पड़ेगा। अब दोनों फिर से खड़े हो जाओ, मम्मी पापा, मम्मी पापा खड़े होंगे सिर्फ, ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है, सोल हैं ये दोनों सिर्फ, नहीं, सोल प्लेइंग अ रोल, कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन है कौन, सोल। अब एज ऑफ बॉडी आपकी, हाँ 40 और 34, तो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद भी हम काफी साल एक अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं, राइट, तो अलग अलग संस्कार बनते हैं। तो ये 40 इयर्स से इस शरीर में है, ये 34 इयर्स से इस शरीर में है, लेकिन पहले कितने साल पहले शादी हुई, 13 साल पहले, ओके, सो 40 माइनस 13, 27 साल इनकी सिचुएशंस अलग थी, इनका बैकग्राउंड अलग था, इनका घर का वातावरण सब डिफरेंट था, इनका उतना 13 माइनस कर दो 30 से तो इनका डिफरेंट था। तो इस जीवन में भी इनकी रिकॉर्डिंग दोनों की सोल के ऊपर अलग अलग थी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग घर, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए, राइट और रॉन्ग, यस। अब 13 साल से ये इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उससे पहले 27 इयर्स ये अलग रह रहे थे। अब इस शरीर में आने से पहले ये कहां थे, ये सोल इस बॉडी में आने से पहले 40 इयर्स पहले ये कहां थे, एक और बॉडी में थे। अब इसको विजुअलाइज करो कि इस ये सोल इस शरीर में तो सिर्फ 40 इयर्स से है, इससे पहले एक अलग शरीर, सोचो उसमें वो 100 इयर्स थे। अब 100 इयर्स में सिचुएशंस अलग, बैकग्राउंड अलग, प्रॉब्लम्स अलग, संस्कार अलग, कर्म अलग, एक और शरीर को यहां खड़ा कर दो, उससे पहले वो एक और शरीर में थे उसमें भी 100 ईयर्स थे, उससे पहले वो एक और शरीर में थे उसमें भी 100 ईयर्स थे, उससे पहले वो एक और शरीर में थे वो उसमें भी 100 ईयर्स थे, इनके ऊपर कितने ईयर्स की रिकॉर्डिंग है? तो सपोज कम से कम में भी कहो तो इनके ऊपर 1000 सालों की रिकॉर्डिंग तो है ही है। इनके ऊपर कितने सालों की रिकॉर्डिंग है? इनके ऊपर भी 1000 सालों की रिकॉर्डिंग है। 1000 सालों के संस्कार, सिचुएशंस, कर्म, मतलब 1000 अलग अलग तरह के गाने सीडी के ऊपर। ये सीडी पे गाने बिल्कुल अलग, ये सीडी पे गाने बिल्कुल अलग, अब इकट्ठे रहना है। अब चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिश्ता है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड रिश्ता है, चाहे वो ऑफिस में रोल में रिश्ता है, वो रोल नहीं है, वो कौन है? वो सोल है हु हैज बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी विद लॉट ऑफ संस्कार्स, लॉट ऑफ कर्मा, प्लेइंग दिस रोल। देखने का नजरिया बदले हैं। अब क्या इनके संस्कार बिल्कुल एक दूसरे के जैसे सेम होंगे? होंगे नहीं होंगे? डिफरेंट होंगे? कितने डिफरेंट होंगे? आप दोनों के संस्कार एक दूसरे के साथ कितने डिफरेंट है या कितने सेम है? डिफरेंट ही है। अच्छा, काफी डिफरेंट भी है। कोई ऐसा संस्कार जो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों का? अच्छा, सोचने का तरीका ही डिफरेंट है। देखा, संस्कार तो वो दूर की बात है, सोचने का तरीका ही डिफरेंट है। रिश्ता मीन्स ये कि दो सोल्स जिनका सोचने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है, संस्कार ही बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उनको कैसे करना है? एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ काम करना है। तो क्या वो एक दूसरे जैसे बन जाएंगे? नहीं। तो रिलेशनशिप मतलब ये नहीं हमें सेम होना है एक दूसरे के साथ। रिलेशनशिप मतलब हमें एक दूसरे के संस्कार के साथ क्या करना है? एडजस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, मोल्ड करना है। कोई एक संस्कार जो बिल्कुल डिफरेंट है? इतने सारे हैं कि उनसे चूज ही नहीं हो पा रहा। एक चूज करो ना बहन जी। चलो आप बताओ, एक संस्कार जो बिल्कुल डिफरेंट, एक नेचर मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, गुस्सा है। तो क्या एक को आता है दूसरे को नहीं आता? ऐसा अच्छी बात है ना, कट्ठे नहीं आता, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी सिचुएशन में करो, वो किसी सिचुएशन में करे, पर जिसमें आपको आता है उनको वो सिचुएशन गलत नहीं लगती ना, इसीलिए अलग अलग सिचुएशन में आ रहा है ना गुस्सा। तो गुस्सा पता है ज्यादा किस बात पे आ रहा होता है? कि इनको कैसे नहीं वो बात गलत लग रही है जो मुझे बात गलत लग रही है, और दूसरे को इस बात पे गुस्सा आता है कि इनको ये गलत लग क्यों रही है, इसमें गलत क्या है, ये तो बिल्कुल सही है। होता है ऐसा? सेम सिचुएशन, सेम बात, और कभी कभी तो वो बात बच्चों के बारे में भी होती है, वो भी हो जाती है। तो बीच में वो सोल आके जर्नी भी आ जाती है साथ में। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक चीज सही लग रही होती है, उनको दूसरी चीज सही लग रही होती है, और जो वो सोल है जिसके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं, जो सोल के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं, उसको तो बिल्कुल तीसरी ही चीज कोई सही लग रही होती है। बिकॉज हमारी जर्नी कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो इनको विजुअलाइज करें, दो सीडीज हैं, इतने 1000 ईयर्स के गाने इन पर, इतने 1000 ईयर्स के गाने इन पर, फिर ये इकट्ठे रहने लगे, राइट? तो ये ने सोचा इसके गाने और मेरे गाने तो बिल्कुल डिफरेंट है, कभी कुछ बजता है यहां से, कभी कुछ बजता है। वी हैव टू लर्न टू एंजॉय द म्यूजिक। जैसे पड़ोसियों के घर कुछ और गाना बज रहा हो तो इरिटेट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका गाना वही बजने वाला है। तो धीरे धीरे हमें उन म्यूजिक की क्या करनी है? आदत डालनी है। और धीरे धीरे जब रहते 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 उनके गाने भी अच्छे लगने लग जाते हैं, और धीरे धीरे तो पता नहीं चलता हम भी उनके गाने गुनगुनाने लग जाते हैं अपने घर के अंदर। ये है वायुमंडल और वाइब्रेशन का असर। इसी तरह हमारा भी एक दूसरे के संस्कार का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही एक दो साल कर ही रहे थे, उतने में तीसरी सोल आ गई घर में, खड़े हो जाओ। आई कि नहीं? किस किस के घर तीसरी सोल भी आ गई? हाँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम वेट कर रहे होते हैं कि वो तीसरी सोल आने वाली है हमारे घर, तब भी हमें याद नहीं होता कि एक आत्मा आने वाली है हमारे अंदर। गर्भ में शरीर बनता है सिर्फ, हमें लगता है वो बच्चा गर्भ में बन रहा है, बच्चा गर्भ में नहीं बन रहा है, बच्चे का ड्रेस गर्भ में बन रहा है। आत्मा तो एक जगह से शरीर छोड़ेगी, गर्भ में आके प्रवेश कर लेगी। अब पेरेंट को लगता है कि बच्चा आने वाला है, मतलब एक न्यू बेबी, मतलब न्यू एकदम क्लीन कोई आ रहा है। नहीं, बॉडी इज न्यू, सोल इज ओल्ड। अब क्या इसके भी कुछ संस्कार आप दोनों से अलग है? राइट, सो रिमेंबर, योर चाइल्ड इज नॉट अ ब्लैंक सीडी। लिख लो, माई चाइल्ड इज नॉट अ ब्लैंक सीडी, वो ओल्ड सोल है बेटे। हमें लगता है मेरा बच्चा, हम जो लिखना चाहेंगे उनके भाग्य में हम लिखेंगे, उनकी स्क्रिप्ट हम लिखेंगे। वो बच्चा सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, आत्मा पुरानी है, वो अपने साथ बहुत सारे संस्कार और कर्म लेकर आए हैं। उनकी तरफ देखने के नजरिए को चेंज करें, एक दूसरे की तरफ देखने के नजरिए को चेंज करें। तो जो मुझे राइट लगता है, हो सकता है दूसरे को वो बिल्कुल रॉन्ग लगे। क्यों लगे? क्योंकि हरेक हर सिचुएशन को, जैसे उन्होंने कहा ना, वही सिचुएशन में कभी मैं गुस्सा करता हूं, वो दूसरे सिचुएशन में गुस्सा करते, वो मेरे वाली सिचुएशन में गुस्सा नहीं करते, मतलब वो वाली सिचुएशन उनको तंग नहीं कर रही है, और जो उनको तंग कर रही है वो इनको तंग नहीं कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? सिचुएशन तो वही है, ऐसे क्यों होता है? अलग अलग सिचुएशन अलग अलग लोगों को तंग कर रही है। डिपेंड्स ऑन संस्कार जो सिचुएशन को देखता है। तो इसको लिखें, मेरा संस्कार मेरा लेंस है, फिल्टर है इधर, जिसके थ्रू हम सिचुएशन को देखते हैं। तो हरेक व्यक्ति, हरेक आत्मा उसी सिचुएशन को अलग लेंस से देखेगी, अलग संस्कार से देखेंगे। सपोज एक घर में किसी के अंदर बिल्कुल शांत रहने का संस्कार है, किसी के अंदर जोर जोर से शोर मचा के बोलने का संस्कार है, किसी के अंदर हर जगह समय से पहले पहुंचने का संस्कार है, किसी के अंदर प्यार से देर से पहुंचने का संस्कार है, किसी के अंदर हरेक पर विश्वास करने का संस्कार है, और दूसरे के अंदर डाउट करने का संस्कार है, किसी के अंदर लोगों की निंदा करने का संस्कार है, किसी के अंदर लोगों की विशेषता को देखने का संस्कार है। तो कई बार संस्कार बिल्कुल पोल ऑपोजिट होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के संस्कार को देखते हुए कहते हैं ये गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। सामने वाला कहता है आप गलत हैं, ऐसे थोड़ी होता है। दोनों में से कौन गलत होता है? सपोज एक के अंदर डाउट करने का संस्कार है, दूसरे के अंदर ट्रस्ट करने का संस्कार है, तो दोनों में से कौन गलत है और कौन सही है? चलो चलो आंसर बताएं, घर जाके करना है फिर हमको ये होमवर्क। एक के अंदर विश्वास करने का संस्कार है, एक के अंदर शक करने का संस्कार है, दोनों में से कौन सही है? जैसे सामने की ड्रेस दीदी ने जो पहनी है वो व्हाइट कलर है, अभी यहां दो लोग आते हैं, एक ने ब्लैक कलर का लेंस पहना है, एक ने रेड कलर का लेंस है, एक का ब्लू कलर का लेंस है, तो हर एक उस कपड़े को किस तरह से डिस्क्राइब करेगा? वो कहेगा तो जेट ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है। दूसरा कहेगा ब्लैक किधर है, वो तो बिल्कुल प्योर रेड है। बोलेगा तुम वो रेड कैसे दिखाई सकता है, ये तो बिल्कुल ब्लू है, जो है वो अलग है और जो दिखाई देता है वो अलग होता है, और हर एक को अलग अलग दिखाई देता है। अब तीनों में से कौन राइट है, ब्लैक ब्लू या रेड? जिसने बोला ब्लैक वो राइट है, जिसने बोला ब्लू राइट है, जिसने बोला रेड वो राइट है, कौन राइट है तीनों में से? हाँ, लेंस को चेंज तो करना ही है, राइट, एब्सोल्युटली, लेकिन फिलहाल कौन राइट है? सो टू रिमेंबर, हरेक को हरेक सिचुएशन उनके ही लेंस से दिखाई देगी, और क्योंकि उनके पास वो लेंस है तो उनको वो ही सही लगेगा, चाहे पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी हो जाए, उनका लेंस वही है, तो उनका संस्कार उनका लेंस होता है। तो जब दो लोग किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो एक होता है इनका ओपिनियन, एक होता है उनका ओपिनियन, और एक होता है जो वो दूसरे के बारे में सोचते हैं, और एक होता है जो एक्चुअल असलियत है। वो तो दोनों ही नहीं देख पा रहे क्योंकि दोनों का लेंस अलग है। सो देयर ट्रूथ, माय ट्रूथ एंड द एक्चुअल एब्सोल्यूट ट्रूथ। व्हाइट तो किसी को दिखाई ही नहीं दिया ना तीनों में से, एक्चुअल तो व्हाइट था लेकिन व्हाइट क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि लेंस कलर्ड है। तो मेजॉरिटी परिस्थितियों में हम सत्य को तो देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने देह भान के संस्कारों के थ्रू हर परिस्थिति को देखते हैं। संपूर्ण सत्य तो दिखाई ही नहीं देता है। तो जितना सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, लेंस का कलर क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ईगो घटता जाएगा, गुस्सा घटता जाएगा, जेलिसी घटती जाएगी। वो जो लेफ्ट साइड पे रखे थे सारे कल, लेफ्ट साइड पे जो रखे थे वो लेंस हमें सही पिक्चर को नहीं दिखाते हैं। तो धीरे धीरे हमें लेफ्ट साइड से कौन सी साइड पे लेंस को शिफ्ट करना है? राइट साइड पे। अब लेकिन इनके पास ये कलर का लेंस क्यों है? इनका लेंस मेरे लेंस की तरह सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की जर्नी अलग है। आज हम अपने जीवन में भी देखें, एक दिन भी दो लोगों का बिल्कुल अलग बीतता है। तो एक दिन में भी इतनी सारी अलग रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो एक जीवन काल में और इतने सारे जो जीवन जिए हैं इतनी सारी कॉस्ट्यूम्स में एकदम अलग रिकॉर्डिंग है। तो अलग रिकॉर्डिंग उनकी, अलग रिकॉर्डिंग मेरी, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। दोनों अपनी रिकॉर्डिंग से उस परिस्थिति को देखते हैं। आज से दूसरों को गलत सोचना और गलत बोलना बंद करें। इट इज अ रिजेक्शन एंड इट इज अ डिसरिस्पेक्ट। गलत नहीं, वो गलत नहीं है, वो मुझसे, वो गलत नहीं है, वो मुझसे अलग है। नॉट रॉन्ग बट डिफरेंट। डिसिप्लिन करना है, करेक्शन करनी है, लेकिन रॉन्ग बोलने से रिजेक्शन हो जाती है। और रिजेक्शन आत्मा की शक्ति को क्या करती है? रिजेक्शन आत्मा की शक्ति को घटाती है। तो एक जीवन काल में भी अगर हम देखें, हमने इतनी परिस्थितियां देखी हैं, किसी ने धोखा खाया, किसी ने पानी के साथ हार खाया, किसी ने अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया। अलग 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 चीजें हुई होती हैं अलग अलग जीवन काल में, उसका प्रभाव हमारे इस जीवन काल में दिखाई देता है। तो जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को हॉस्पिटल से डर लगता है, कोई तो बड़े बड़े काम कर लेता है लेकिन सुई लगाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है पास्ट 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 में कि सुई इज इक्वल टू कुछ जो हुआ था उधर। ये सारी हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो अब किसी एक व्यक्ति को आप चूज करें, वो पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, किसी एक को चूज करें और उसका कोई एक संस्कार देखें जो आपको समझ नहीं आता ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। समझ नहीं आता, हम बहुत बार बोलते हैं I can't understand them, how can they be like this, how can they do like this। और ये कहने से हमने बार बार मन में भी कहा, उनको भी कहा, उनके बारे में भी औरों को कहा, मुझे नहीं समझ में आता ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये गलत है। ये कहने से हमने किसकी बैटरी घटाई? हमने पहले किसकी बैटरी घटाई? अपनी बैटरी घटाई। वो वाइब्रेशन उनको गई और उनकी बैटरी को भी क्या किया? हटाया। तो चेंज करते हैं, लेकर आए उनको सामने। कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है। कितनी बार हम कहते हैं गलत है, मुझे नहीं समझ में आता ये ऐसे कैसे घट सकता है। उनको देखें, मेरा बच्चा नहीं सिर्फ, वो तो उसका रोल है, वो आत्मा एक लंबी जर्नी पर आए हैं, अनेक अनुभव, अनेक संस्कार, अनेक कर्म। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा हुआ था किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में जिसकी वजह से ये संस्कार रिकॉर्ड हुआ उन पर। हमें सिचुएशन नहीं पता, लेकिन अब हमें अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से ये संस्कार रिकॉर्ड हुआ। तो उनको देखें और धीरे से उनको कहें, आई अंडरस्टैंड यू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी ये नेचर क्यों है। दूसरा, आई एक्सेप्ट यू, मतलब हम स्वीकार करते हैं कि ये संस्कार कहीं कैसा बना, उस पर प्रश्न चित्त नहीं हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, उनके उस संस्कार को देखते हुए जो सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, हमने क्या करना है। कल हमने क्या देखा था, हमने सर्कल को क्या करना है, क्या करना है, वाइट करना है। तो थर्ड लाइन होगी, आई सेंड ब्लेसिंग्स टू यू, हम आपको दुआएं और शक्ति भेज रहे हैं उस संस्कार को चेंज करने के लिए। और दुआएं कैसे भेजी जाती है, जैसे हम खुद के लिए लिख रहे हैं, आई एम अ फिल इन द ब्लैंक, उनके लिए हमने लिखना है यू आर अ फिल इन द ब्लैंक, उनके लिए भी संकल्प बनाने हैं। तो अगर सपोज उनके अंदर डर का संस्कार है, उनके अंदर कंफ्यूज होने का संस्कार है, उनके अंदर छोटी छोटी बातों पे लो फील होने का संस्कार है, मुरझाने का संस्कार है, कोई भी ऐसा संस्कार है, हमने उनके लिए व्हाइट सर्कल का ब्लेसिंग बनाना है। तो पहले आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट यू, एंड देन आई सेंड ब्लेसिंग्स टू यू, आपको हम समझते हैं, स्वीकार करते हैं और आपको दुआएं और शक्तियां भेजते हैं। इसको रिश्ता कहा जाता है। और ये करते हुए सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ेगी, ये करते हुए पहले किसकी शक्ति बढ़ेगी, पहले हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अहंकार क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, क्योंकि हम आत्मा और आत्मा की जर्नी को समझना शुरू कर देते हैं। एक जीवन काल में ही देखो हर रोज कितनी बातें आ रही हैं, अंतिम स्थिति कैसी होती है। इसीलिए सिखाया जाता है अंतमति सुगति, अंत की जो स्थिति होती है ना, वो आगे की गति पर बहुत प्रभाव डालती है कि हम आखिरी कौन से संकल्प से जाते हैं। आखिरी संकल्प हमेशा हाईएस्ट एनर्जी का होना चाहिए, आखिरी संकल्प, उसकी प्रैक्टिस रोज करनी पड़ती है कि मेरा आखिरी संकल्प इस स्थिति का होगा। क्योंकि जिस स्थिति में आखिरी संकल्प होगा, बस आत्मा उस रिकॉर्डिंग के साथ छूट जाएंगे और वो रिकॉर्डिंग उसकी अगली जर्नी पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, जैसे 3-4 साल पहले पुरानी बातें आपको अब याद नहीं रहेंगे। हाँ, या संस्कार तो है, आपको रियलाइज्ड है, सारे दिन आपके संस्कार एक्शन में आ रहे हैं, लेकिन वो संस्कार कौन सी बातों से बने वो याद नहीं होगा। नहीं, वो नहीं रिकॉर्ड हुए, मेमोरी फेड होती जाएगी ना। क्योंकि अगर मेमोरी याद हो गई तो फिर प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, अभी ये जो आपकी 11 ईयर ओल्ड की बिटिया है इस कॉस्ट्यूम में, इसको अगर ये याद आ जाए कि वो पिछले घर में जिसपे थी ना, वो यहीं बैठे हैं इस हॉल में अभी, फिर ये वो यहां से उठ जाएगी, फिर याद आ गया, फिर क्या हो जाएगा उसके बाद, कुछ को आता है और वो धीरे धीरे फिर भूल। कौन सी एज में याद आता है, जब वो छोटे होते हैं तभी याद आता है ना। हाँ, जब वो छोटे होते हैं तो याद आता है, हर बच्चे को याद होता है वो कहां से आए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो नए शरीर में आते हैं और नई कोडिंग होने लग जाती है तो पुरानी क्या हो जाती है, भूलने लग जाती है। कुछ बच्चों को बोलने की आयु तक वो याद रहता है, तो वो अपनी पुरानी बातों को क्या करते हैं, सुनाते हैं। कुछ लोग चेक करने जाते हैं कि वो जो सुना रहे हैं वो राइट है, कुछ लोग उनको ऐसे बच्चे बोल रहे हैं करके इग्नोर करते हैं, तो और 1-2 साल में वो भूल जाती है। मेमोरी पावर अलग अलग होती है ना हर एक के, जैसे आपकी मेमोरी पावर मेरे से अच्छी हो तो आपको 5 साल वाली पहली बात याद होगी, मुझे 10 मिनट पहले भूल गई। मेमोरी पावर अलग अलग है। अभी भी हमारे को कुछ बातें पहले की याद हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पहले की रिकॉर्डिंग है। जैसे किसी के अंदर रिजेक्शन का संस्कार है, उसको पता ही नहीं लगता कि वो क्यों रिजेक्टेड फील करता रहता है हर एक के व्यवहार से, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने किसी सिचुएशन में वो रिजेक्शन का संस्कार क्रिएट किया था। मुझे सिचुएशन याद नहीं है, लेकिन रिजेक्शन का संस्कार बहुत पावरफुल है मेरे ऊपर। तो जैसे ही कोई एक वर्ड भी कहता है ना, मैं कहती हूँ उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर कोई सिर्फ ऐसे देखता, मैंने कहती हूँ उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। दूसरे मेरे आसपास किसी को रिजेक्शन नहीं फील होगा उस जेस्चर से, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फील होगा क्योंकि वो संस्कार मेरे ऊपर रिकॉर्डेड है। तो जो कंफर्टेबल संस्कार है वो गानों को प्ले करते रहे, जितना उनको प्ले करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा। और जो अनकंफर्टेबल संस्कार है उनको क्या करना है, उनको चेंज करना है, अपने भी संस्कारों को चेंज करना है और जो हमारे साथ है उनको भी संस्कारों को चेंज करने में हेल्प करना है। तो जो लेफ्ट हैंड वाले साइड के संस्कार है उनको चेंज करना है, जो राइट हैंड वाले संस्कार है उनको क्या करना है, और स्ट्रांग बनाना है। अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा यूज करें। किस किस के अंदर संस्कार है प्यार और रिस्पेक्ट से बात करने का? हाँ थोड़ा सबके अंदर है, लेकिन हम इसको हमेशा यूज नहीं करते, जब सिचुएशन फेवरेबल है हम उस अच्छे वाले संस्कार को यूज कर लेते हैं, और जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो हम ऑपोजिट संस्कार को यूज करते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा अच्छा संस्कार है उसको हमें कब यूज करना है, हमें उसको हमेशा यूज करना है और हर एक के साथ यूज करना है, ऑलवेज एंड विद एवरीवन। ये अंडरलाइन करो, तब वो हमारा संस्कार है, हमारा ट्रेडमार्क होना चाहिए वो। दुनिया गारंटी ले, कुछ भी कोई भी कर ले इस व्यक्ति के साथ, ये हमेशा प्यार और सम्मान से बात करते हैं, फिर वो हमारा संस्कार है। लेकिन जो हमारे साथ अच्छे हैं, सिर्फ उनके साथ हम अच्छे हैं, उसको संस्कार नहीं कहेंगे, वो तो सिचुएशन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। जैसे किसी का संस्कार होता है सबको मदद करने का, उनके साथ कोई गलत भी कर दे वो 2 साल बाद वापस जाके उसी की मदद कर देंगे। दूसरे कहेंगे भाई उन्होंने तुम्हारे साथ इतना किया, कहता क्या करूं, मदद करना मेरा संस्कार है। सो वी लिव थ्रू आर संस्कार्स, वी सी लाइफ थ्रू आर संस्कार्स, वी सी पीपल थ्रू आर संस्कार्स। इसीलिए संस्कार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो अच्छे वाले हैं उनको क्या करना है, लिख लो, यूज विद एवरी वन ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन। ये नहीं जब सिचुएशन ठीक तब यूज किया, वो वाला गाना हमेशा प्ले करना है और सबके साथ प्ले करना है। हेल्प करने का गाना है, सबके साथ प्ले करो। नम्रता से बात करने का, मधुरता से बात करने का गाना है, सबके साथ प्ले करो। कभी कभी हम कहते हैं बाकी सबके साथ तो ठीक है, पता नहीं इस व्यक्ति के साथ ही नहीं प्ले होता ये वाला गाना, उसके ऊपर वर्क करो ताकि वो संस्कार हमारा ट्रेडमार्क बनना शुरू हो जाए कि कुछ भी हो जाए दिस संस्कार इज परमानेंट ऑफ दिस सोल। और जैसे हम एक संस्कार पे भी ऐसे वर्क करेंगे, हमारे बहुत सारे अनकंफर्टेबल संस्कार्स हैं वो क्या होते जाएंगे, वो उसके ऊपर वाइट अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझना ईजी, सबको देख लिया अपने इर्द गिर्द जो है, किसी को क्या नहीं कहेंगे आज से, हम मन में भी नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, वो गलत है, नहीं वो अपने संस्कारों के वश चल रहे हैं और उनको उनका ही संस्कार राइट लगेगा। हम उनको क्या दे सकते हैं सिर्फ, हम उनको दुआएं और ब्लेसिंग्स देकर उस संस्कार को चेंज करने की क्या दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस करनी है, जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। कल भी वही किया ना, संकल्प से सिद्धि, जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। इसी तरह लोगों में जो दिख रहा है उसको नहीं मन पे रिपीट करो, जो देखना चाहते हो उसको मन पे रिपीट करो। वो गलत कर रहे हैं, अपने संस्कार के वश हैं, उनको वो ही सही दिखाई दे रहा है। कभी अनुभव नहीं किया, किसी को कितना भी एक्सप्लेन करो, उसको समझ ही नहीं आता हम क्या कह रहे हैं, ऐसा होता है कभी?
हम अपना कह रहे होते हैं, वो अपना कह रहे होते हैं, कहते नहीं बट वो ऐसे नहीं ऐसे था, हम कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, बिल्कुल डिफरेंट। क्यों? क्योंकि दोनों किससे देख रहे हैं। तो कभी कभी कोई कंसेंसस नहीं आएगा, हम एकमत नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग अपने अंदर नहीं रखनी है। हमेशा टू रिमेम्बर, सोल ऑन अ जर्नी, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग संस्कार, फुल स्टॉप। ये उनका संस्कार है। कर लेंगे इतना इजी जी? क्या लगता है, ट्रस्ट करना अच्छा संस्कार है? बस फिर अब एक और संस्कार क्रिएट करना है। ट्रस्ट करने के बाद एक्सपेक्टेशन, वो संस्कार चेंज करना है। और तीसरा, अगर किसी ने कुछ विपरीत किया, उससे लेट डाउन फील नहीं करना है। मैंने अपने संस्कार से प्ले किया। क्या होता है, हम जब कुछ करते हैं किसी के लिए, साथ में गाना और रिकॉर्ड कर देते हैं, कौन सा, कि ये भी मेरे साथ अच्छा करेंगे क्योंकि मैंने इनके साथ अच्छा किया। हम अपने संस्कारों से चलेंगे, वो अपने संस्कारों से चलेंगे। आप अपने अच्छे वाले गाने को प्ले करते रहो, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट करना दूसरा भी सेम गाने प्ले करने वाला है। तो एक और गाना रिकॉर्ड करेंगे कि जब दूसरा कोई ऑपोजिट गाना रिकॉर्ड करेगा तो भी मेरे अच्छे वाले गाने चलते रहेंगे। ये तो इजी है ना करना? हाँ ठीक है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब उनके पास मेरा वाला गाना होना चाहिए। इवन अ सिंपल चीज, किसी के पास संस्कार होता है टाइम पे आने का, उनको लगता है सबको टाइम पे आना चाहिए। होता है ऐसे या नहीं होता? और सब टाइम पर आते हैं, लेकिन सबका टाइम पर आने का टाइम ही अलग अलग होता है। होता है या नहीं होता ऐसा? ठीक है ना। तो सपोज हॉल में आने का टाइम 6 बजे का है, तो किसी का संस्कार होता है 5:45 बजे इज ऑन टाइम। किस किस का ऐसा है 5:45 इज ऑन टाइम, और किसी का होता है 6:05 इज ऑन टाइम। वो कौन है? 6:05 इज ऑन टाइम। और किसी का 6:15 तक आए, तो टाइम पे ही तो है ना, कौन सा कुछ शुरू होता है इतना टाइम पे? किस किस के पास 6:15 वाला संस्कार है? अब तीनों में से रॉन्ग कौन और राइट कौन? कौन राइट है, कौन राइट है? 5:45 वाले को सारे 5:45 वाले लोग राइट दिखाई देंगे, 6 वाले को 6 वाले राइट दिखाई देंगे, और 6:15 वाले को 6:15 वाले राइट दिखाई देंगे, क्योंकि वो वाला लेंस मेरे लेंस से क्या करता है, मैच करता है। लेकिन तीनों अपने अपने नजरिए से कैसे हैं, राइट हैं। तो 5:45 वाला 6:15 वाले को देख के कहेगा, भाई तुम लेट कैसे आ सकते हो, मुझे समझ ही नहीं आता लेट कैसे कोई आ सकता है। तो वो 6:15 वाला प्यार से मुड़ के कहेगा, मुझे समझ में नहीं आता पहले आकर कैसे बैठ सकते हो। तो वो सामने वाला कहता है, पहले आना तो बहुत अच्छा होता है। तो कहते क्यों, आपके पास कोई टाइम काम नहीं, आप 15 मिनट पहले आके बैठ जाते हो यहाँ पर। सो वी कैन हैव एन आर्ग्यूमेंट ऑन व्हाई वी आर डिफरेंट। और कभी कभी आप देखो टॉपिक तो साइड पे रह जाता है, टॉपिक साइड पे रह जाता है, हम किसी और चीज पे ही आर्ग्यू करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों का उसी सिचुएशन को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग रहेगा अनलेस दोनों में से कोई अपने संस्कार को क्या कर ले, चेंज कर ले। तो राजयोग मेडिटेशन संस्कार को चेंज करने के लिए मेडिटेशन है। हम कहते हैं ना, इस मेडिटेशन का पर्पस क्या है, ये मेडिटेशन का पर्पस है संस्कार को चेंज करना। तो एक लाइन बड़े बड़े कैपिटल में लिख लो, नो वन इज रॉन्ग, कोई गलत नहीं है, वो अपने पुराने रिकॉर्डिंग के वश है। उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्यों अपने वश है। जैसे वो भाई साहब ने अभी कहा ना, मुझे ट्रस्ट करना नहीं, लेकिन फिर से ट्रस्ट हो जाता है। तो वो तो अच्छा संस्कार है, लेकिन वो फिर से न चाहते हुए भी होना, उसको कहेंगे आत्मा उस संस्कार के परवश है, वी आर बिकॉज ऑफ दैट संस्कार। तो राजयोग मीन्स टू वर्क ऑन आर संस्कार एंड टू चेंज दैट संस्कार जो कंफर्टेबल नहीं है। बाकी जो अच्छे हैं उनको और स्ट्रांग बनाना है। अब हर एक को इस नजरिए से देखना, यहां से जाने से पहले या आज के दिन में ही एक होमवर्क करना है, सारे जो आपके क्लोज दायरे ऑफ इंटरेक्शन के रिश्ते हैं, हर एक का कोई एक संस्कार देख लें जो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, और उसका विपरीत वाइट सर्कल की लाइन बना के यहां से डायरी में आप लिख कर जाएंगे। घर जाने के बाद नहीं लिखेंगे, कब लिखेंगे, यहां लिखेंगे यू आर अ उनके नाम से, ठीक है। कैसे लिखना है, जो उनका अनकंफर्टेबल संस्कार है, सपोज अभी इनके आपके साथ आपकी स्पाउस भी आई है भाई साहब जो ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ कोई आया फैमिली से, क्या आपके घर वालों को प्रॉब्लम होती है आपके इस विश्वास करने के संस्कार से, आपको खुद को होती रहती है, आपने किसी को कुछ दिया उसने उसका क्या किया, वो उसका कर्म है, हमारा भाग्य कहां तक बनेगा, हमारे कर्म से, वो उसका क्या करेंगे, वो उनका भाग्य बनेगा। आप किसी को एक क्रिस्टल का अच्छा सा गिफ्ट दे दो, उसे टड़म करके उसको गिरा देंगे और चूर चूर हो जाएगा, हमारा कर्म कहां तक था, देने तक, उसने उसका क्या किया, उसकी चॉइस। आप किसी को प्रसाद दे दो, आपका कर्म हो गया, उसने उस प्रसाद का क्या किया, किसी ने प्रसाद को रख दिया, किसी ने प्रसाद को फेंक दिया, किसी ने प्रसाद को दूसरे को दे दिया, वो हमें नहीं देखना है, हमारा कर्म क्या था, प्रसाद दे दिया, अपना कर्म किया, फुल स्टॉप। सिर्फ ध्यान रखना है कि दूसरे कर्म से हर्ट नहीं होना, नहीं तो फिर अपना ट्रस्ट ही हमारा डिप्लीटर बन जाएगा, ये ध्यान रखना है, हमारा अच्छा संस्कार हमारे जीवन में विघ्न न डाले। और अच्छा संस्कार विघ्न तब डालता है जब हम दूसरे के संस्कार से एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे जितना अच्छा संस्कार नहीं है। जैसे किसी के अंदर टाइम पे आने का अच्छा संस्कार है, लेकिन जब कोई टाइम पे नहीं आता उसको देख देख के इरिटेट होते रहते हैं, तो दूसरे के वो वाले संस्कार को देखकर इरिटेट होना, तो मेरा अच्छा संस्कार ही मेरी शक्ति को घटाने का कारण बन गया। तो अपने अच्छे संस्कार को बढ़ाना है और दूसरे के संस्कार को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि ये उनकी रिकॉर्डिंग है, और फिर उसको रिकॉर्डिंग चेंज करने में सहयोग देना है बाय ड्राइंग अ वाइट सर्कल, स्पेशली घर में। तो आज से प्रैक्टिस करनी है, सामने वाला अपने संस्कार से बात करेगा, हमें वो कमजोरी को यहां नहीं रिकॉर्ड करना, उनके लिए ब्लेसिंग क्रिएट करनी है और उनको वो भेज देना है, यू आर अ, जो हम चाहते हैं उनके अंदर हो वो हमारा अफर्मेशन उनके लिए बन जाएगा। कल सबने लिख लिए थे अपने अफर्मेशन, अच्छे से संकल्प लिख लिए थे, ऐसे ही उनके लिए आज लिख लो, आज एक और पेज बनाओ, नाम लिखो यू आर अ, दूसरा नाम लिखो यू आर अ, एक एक क्वालिटी, और वो क्वालिटी वो होगी जो ऑपोजिट ऑफ उनका अनकंफर्टेबल संस्कार होगी। घर के लोगों को देख लो और जिनके साथ काम करते हैं, वो क्लोज सर्कल में जिनके संस्कारों के साथ सारा दिन इंटरैक्ट करना है, इसकी एक लिस्ट बनाओ, इसको आप प्रैक्टिस करो, इतना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जैसे ही हम उनके संस्कार का चिंतन करेंगे तो राइट हैंड कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। जैसे ही हम कहेंगे यू आर अ, तो राइट हैंड कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके उनको क्या दे रहा है, शक्ति दे रहे हैं, उनका संस्कार चेंज हो जाएगा। क्लियर सबको, इजी, हाथ उठाओ, इजी। आज लिख कर जाएंगे, लेकिन कम से कम 5-6 नाम आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, नेम के साथ, यू आर अ फिल इन द ब्लैंक सोल, आप फिल इन द ब्लैंक आत्मा है। दूसरी चीज हम क्या लेके जा रहे हैं, कर्म, ठीक है। हमारा भाग्य किस आधार से बनता है, बचपन से सीखा, जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है, तो उंगली ऊपर चली गई। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हर एक का भाग्य कैसा होगा, परफेक्ट होगा। तो परमात्मा भाग्य नहीं लिखते, परमात्मा हमें भाग्य लिखने का ज्ञान देते हैं, भाग्य लिखने की शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं, जैसे एक माता पिता बच्चे को देता है। लेकिन कर्म बच्चे का कौन करता है, बच्चे का कर्म माता पिता नहीं कर सकते, बच्चे का कर्म किसने करना है, बच्चे ने खुद ही करना है। तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन कर्म कौन कर रहा है, कर्म हम कर रहे हैं। तो हमारा भाग्य कौन बना रहा है, हमारा भाग्य कौन बना रहा है, लिखें, हमारा भाग्य किससे बनता है, मेरे कर्म से। बचपन से सीखा जैसा कर्म वैसा भाग्य, लेकिन बचपन से ये भी सीखा जो कुछ हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो दोनों चीज में कंफ्यूजन है फिर। तो मेरा भाग्य ईश्वर की मर्जी से है या मेरे कर्म से है? परफेक्ट होगा और सबका एक जैसा परफेक्ट होगा। अगर मेरे कर्म से है तो बहुत सारी चीजें परफेक्ट होंगी, लेकिन कुछ कुछ जो मैंने गलतियां की हैं उसका भी रिजल्ट आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जैसा नहीं होगा किसी का भी भाग्य, क्योंकि हर एक का कर्म ही एक जैसा नहीं है। किस किस के दो बच्चे हैं हाथ उठा? क्या आपके दोनों बच्चों के संस्कार एक दूसरे से अलग हैं? अलग है। और क्या उन दोनों बच्चों का भाग्य भी एक दूसरे से अलग हो रहा है? किस किस को लगता है भाग्य बहुत अलग है दोनों का एक दूसरे से? क्यों? एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माता पिता के बच्चे हैं, एक ही परवरिश मिली, एक ही स्कूल में गए, सब कुछ आपने उनको एक जैसा दिया, फिर भी उन दोनों के संस्कार और भाग्य अलग अलग हैं, क्योंकि वो दोनों सिर्फ आपके बच्चे नहीं, दोनों आत्मा हैं जो दो अलग 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 लंबी जर्नी से आए हैं और दोनों अपने साथ अलग संस्कार और अलग कर्म करके आए हैं। तो पांच फोल्डर हर आत्मा पे, वो लिख लो, हर आत्मा पे पांच टाइप ऑफ संस्कार है। एक जो हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, मतलब पिछले कॉस्ट्यूम से। जन्म और मृत्यु ये हमारे शब्द हैं। आत्मा के लिए तो एक ड्रेस छोड़ा, दूसरे ड्रेस में आ गए। जैसे कल हमने अलग ड्रेस पहनी थी, आज हमने अलग ड्रेस पहनी है, हम तो वही हैं। इसी तरह हम ये शरीर रूपी ड्रेस छोड़ेंगे, अगली ड्रेस लेंगे, हम बिल्कुल वही होंगे जो हम इस ड्रेस में हैं, बिल्कुल वही। जो नेचर अभी है, इसी नेचर के साथ हम शरीर छोड़ेंगे, गर्भ में जाएंगे, कुछ महीनों के बाद बच्चा आएगा, वो बच्चे में बिल्कुल वही नेचर दिखाई देगी। इसलिए कुछ घरों में कहते हैं ना, इनकी नेचर बिल्कुल उनकी तरह थी जो गए थे, बिल्कुल ये वैसे ही हैं, बिल्कुल ये वैसे ही बोलते हैं, बिल्कुल ये वो ही आए हैं। आ जाते हैं कई बार वो उसी घर में वापस, वही आते हैं। पहले वो 100 साल के थे, अब वो 200 साल के, 300 साल के दिखाई देते हैं, लेकिन है कौन? वही आते हैं वापस। तो पहला फोल्डर पास्ट संस्कार, पूर्व जन्म। दूसरा फोल्डर परिवार से मिलने वाले संस्कार। कई संस्कार हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डीप इंप्रेशन बनता है गर्भ के अंदर। इसलिए गर्भ संस्कार बहुत पावरफुल चीज है कि गर्भ के समय स्थिति कैसी है माता पिता की, स्पेशली मदर की, लेकिन दोनों की। वायुमंडल कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, परिस्थितियां कैसी हैं, वो सब कुछ वो गर्भ में उस आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। तो वो है दूसरा फोल्डर परिवार से मिले संस्कार। तीसरा फोल्डर संग का रंग, एनवायरमेंट से बने संस्कार, एनवायरमेंट से बने संस्कार, वायुमंडल। कौन से स्कूल में बच्चा जाता है, कौन से उसके दोस्त होते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, ये सब चीजें हमारे संस्कार बनाती है। आजकल फोन हमारा संस्कार बनाता है, संग का रंग, सारा दिन सबसे ज्यादा उसी के साथ है। इसीलिए कल देखा था, कंटेंट इज इक्वल टू संस्कार इज इक्वल टू कर्म इज इक्वल टू भाग्य, क्योंकि वो संग का रंग है। चौथा, मैं कोई भी संस्कार लाई हूं आत्मा, मेरे माता पिता से या परिवार से कोई भी संस्कार मुझे मिले हो, मेरे दोस्तों से मुझे कोई भी संस्कार मिले हो, मैं आज डिसाइड करूं तो अपना संस्कार चेंज कर सकती हूं, उसको कहते हैं विल पावर से बने संस्कार, अपनी इच्छा शक्ति से संस्कार बनाया। फोर्थ फोल्डर है विल पावर। और फिफ्थ फोल्डर जो हरेक के पास है, वो है वो 7 ओरिजिनल संस्कार, जो हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। कल देखा था 7 ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? किस किस को याद है आत्मा के साथ संस्कार कौन से हैं? लिखते, पवित्रता, प्योरिटी, शांति, पीस, हैप्पीनेस, सुख, प्यार, लव, पावर, शक्ति, ज्ञान, नॉलेज, विस्डम, और ब्लिस, आनंद। 7 संस्कार, सतोगुणी आत्मा। अब ये जो 4 फोल्डर हैं, ये हर आत्मा पे अलग होंगे, लेकिन ये जो 5वां फोल्डर है, ये हर आत्मा के पास सेम है। इसीलिए हर आत्मा को शांति चाहिए, हर आत्मा को शक्ति चाहिए। युद्ध भी जो विश्व में चल रहा है वो पावर और पीस के लिए चल रहा है। तो हम अपने संस्कार जो हमें अनुभव नहीं होते, हम उनको अलग तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी से भी पूछो, ये आप क्यों कर रहे हो? कहेंगे खुशी के लिए। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? प्यार के लिए। हर एक वो सात में से एक वर्ड बोलेगा आपको हमेशा। क्योंकि जैसे शरीर पानी का बना है, पानी की कमी महसूस होगी, हम कहेंगे पानी चाहिए, पानी चाहिए। कल आप सबने किसके लिए हाथ उठाया? क्या चाहिए? खुशी चाहिए। वो सात संस्कार चाहिए सबको। लेकिन आज से पक्का करें, वो सात संस्कार चाहिए नहीं, वो सात संस्कार ऑलरेडी रिकॉर्डेड है मुझ आत्मा पर। तो ये पांच फोल्डर, जैसे आपके फोन पर पांच फोल्डर है, पांच प्लेलिस्ट है, हर एक में अलग अलग गाने हैं, लेकिन कौन सा गाना प्ले करना है ये कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? लेकिन जो गाना हम प्ले करते हैं वो फोल्डर कहां आने लग जाता है? वो फोल्डर ऊपर आने लग जाता है और वो ही ऑटोमेटिक प्ले होने लग जाता है। तो अब कॉन्शियसली गाने प्ले करने हैं। और इसीलिए हर एक आत्मा को देखते हुए याद रखना कि भले उसके अंदर आपको कोई भी संस्कार दिखाई दे, उसके पास ये सात संस्कार हैं। तो जब आप लिखेंगे यू आर अ प्योर सोल, पावरफुल सोल, लवफुल, हैप्पी, आप उसके वो वाले संस्कार के फोल्डर को क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं। उसका वो संस्कार प्ले होना शुरू हो जाएगा। वो संस्कार बना नहीं रहे, वो संस्कार ऑलरेडी है उसके पास। हमें सिर्फ उसको प्ले करने में हेल्प करनी है। ठीक है, कौन से पांच फोल्डर? पास्ट लाइफ, फैमिली, एनवायरमेंट, विल पावर, ओरिजिनल संस्कार, सेवन ओरिजिनल संस्कार। अब एक बॉल पकड़े ऐसे अपने हाथ में, कर्म, दोनों चीजें हम लेकर आ रहे हैं, ये संस्कार पांच फोल्डर और कर्म। कर्म मतलब सिर्फ मेरा बोल और व्यवहार नहीं, कर्म मतलब मेरा इंटेंशन, मेरा इंटेंट, मेरा कर्म है। कर्म के पीछे की भाव और भावना मेरा पहला कर्म है। फिर मेरी सोच मेरा कर्म है, मेरी फीलिंग्स मेरा कर्म है, फिर मेरे बोल, मेरे व्यवहार मेरा कर्म है। तो हर एनर्जी जो मैं क्रिएट करती हूँ और बाहर भेज देती हूँ वो कर्म है। एनी एनर्जी दैट आई क्रिएट। मैं अभी अभी बैठकर बोलूँ ये बहन ऐसे क्यों कर रही है, ये मेरा कर्म बन गया। अब मैं बोलूँ इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मेरा कर्म बन गया, बिकॉज मैंने ये एनर्जी क्रिएट की और मुझसे ये बाहर चली गई उनकी तरफ, ये मेरा कर्म बन गया। तो कर्म वो नहीं है सिर्फ जो हम बोलते हैं और व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम अपने शब्दों को और व्यवहार को देख लेते हैं, चेक करते हैं, मैंने इनके साथ अच्छा किया, मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन यहां कितना अच्छा सोचते हैं। इसीलिए कल देखा था, हर रोज रात को सोने से पहले क्या चेक करना है, आज की मेरी कार्मिक जर्नी कैसी रही, रोज का नफा नुकसान चेक करके सोना है, आज किसके साथ क्या ठीक नहीं किया, किसके लिए नहीं सोचा गलत, किसके लिए गलत बोला, कुछ भी हो रात को सोने से पहले उसको चेंज करें। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ना तो उसी टाइम चेंज कर देंगे, दिख जाएगा ओहो ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, फटाफट चेंज करेंगे। और धीरे धीरे गलत होने की मार्जिन क्या होने लग जाएगी, फिर कम होती जाएगी, क्योंकि हम अवेयरनेस से जीना शुरू करेंगे ना। तो पहले तो रोज रात को चेकिंग करनी है, दूसरा हर थोड़ी देर बाद चेकिंग करनी है, तीसरा करते हुए ही चेकिंग कर लेनी है, और चौथा गलती होगी ही नहीं। ठीक है, क्लियर? कार्मिक चेकिंग करेंगे, जो आ रहे हैं मेहमान वो वहीं बैठ जाएं जहां आ रहे हैं, बैठ जाएं वहीं पे। अब इसको हाथ को पकड़ो, बॉल, बॉल पकड़े, पीछे देखना हमारा कर्म नहीं, जहां जरूरत नहीं वहां कर्म क्रिएट करना नहीं, अननेसेसरी उनके साथ एंटेंगल हो गए। दिस इज हाउ वी क्रिएट कर्म, वेयर इट इज नॉट नेसेसरी, आंख नाक कान बंद, हर एक के लिए सोचना नहीं, हर एक की बातों में उलझना नहीं, अपना कर्म बन रहा है। दुनिया में कोई कुछ कर रहा है वो मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, अगर मैंने उसके बारे में सोचा तो मेरा उसके कर्म के साथ उलझ जाना है। मुझे सिर्फ क्या करना है, परमात्मा को याद करके ब्लेसिंग्स भेज दो, उनके लिए प्रार्थना कर दो, उनके लिए मेडिटेशन कर दो, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये बैठकर सोचा तो मैंने भी क्या कर दिया, मैंने भी क्या कर दिया। और हम जनरली जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके बारे में तो सोचते नहीं है, कुछ ऐसा वाला चल रहा है उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो कोई अगर अच्छा कर्म नहीं कर रहा तो हमें उसके बारे में सोच सोच कर बोल बोल कर उसके कार्मिक अकाउंट में उलझना नहीं है, उससे हमारा कर्म बिगड़ता है। परमात्मा को याद करके उसको शक्ति भेज दो, सही कर्म करने का भी संकल्प भेज दो, उसको बताओ आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे कर लेना चाहिए, भेज दो। लेकिन क्यों क्या ये करना, दूसरे के कार्मिक अकाउंट से क्या कर लिया, एंटैंगल पकड़े। भाव, भावना, सोच, शब्द, व्यवहार, इंटेंशन, थॉट, फीलिंग, वर्ड, बिहेवियर, ये है कर्म। ये बॉल जाएगी और फिर ये बॉल वापस आएगी। ये वापस किस रूप से आती है, सिचुएशंस, परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार, लोग मेरे साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये भी बॉल सामने से आ रही है। सिचुएशन मेरी लाइफ में कैसी आती है, ये भी बॉल सामने से आ रही है। तीसरा, मेरे काम कारोबार में कुछ ऊपर नीचे होता है, वो भी बॉल सामने से आ रही है। दुनिया में क्या हो रहा है, वो भी मेरे लिए बॉल सामने से आ रही है। प्रकृति में क्या हो रहा है, ये भी बॉल सामने से आ रही है। प्रकृति के साथ हमने कुछ किया जिसकी वजह से आज प्रकृति बहुत कुछ कर रही है, ऐसे ही नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे ही कर्म का परिणाम है। तो पकड़े बॉल अच्छे से। अब बॉल कैसे फेंकनी है, फिर बॉल फेंकने से पहले क्या सोचना है, बॉल कैसे फेंकनी है। सबसे पहले ये नहीं देखना कि दूसरे कैसे फेंक रहे हैं, दूसरे ने गलत फेंका तो मेरा भी गलत जाएगा। बॉल फेंकने से पहले क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, याद रखना है जो जा रहा है वो वापस आ रहा है, जो चाहिए कि जीवन में आए वो ही फेंकी है। व्हाट यू वांट यू स्टार्ट गिविंग, जो चाहिए कि जीवन में आए वो ही फेंकी है, वो ही वापस आएगा। अब सारा दिन में हमने क्या फेंका है वो तो याद रहता नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है वो सामने से दिखाई देता है। ये जो बॉल हम फेंकेंगे ये वापस आएगी, ये हो सकता है कोई बॉल इमिजिएटली वापस आए, कोई बॉल एक घंटे के बाद वापस आए, कोई बॉल 10 साल बाद वापस आए, और कोई बॉल 100 साल बाद वापस आए। हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन जब वो बॉल 100 साल के बाद वापस आएगी तब तक क्या हो गया होगा, जब वो बॉल 100 साल के बाद वापस आएगी तब तक क्या हो गया होगा, शरीर चेंज कर लिया होगा। जैसे देखो बच्चे हैं, ना ठीक से खाते हैं, ठीक से सोते नहीं, जंक फूड खाते हैं, रात रात तक टीवी देखते हैं, हम उनको कितना भी बोलते रहे तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, सुनते नहीं है, क्योंकि अभी उनकी बॉडी ठीक चल रही है, तो उनको लगता है कुछ नहीं हो रहा मेरे ऊपर। वो बॉल जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, 30-40 साल बाद वापस आ जाएगी। 30-40 साल बाद शरीर में ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो कहेंगे पर मैं तो अभी ठीक खा रहा हूं, लेकिन मुझे ये याद नहीं 20 साल पहले मैंने कैसी लाइफस्टाइल लीड की है। तो हर कर्म का परिणाम उसी टाइम नहीं आने वाला है, लेकिन परिणाम, बोले परिणाम आना ही है। अब एक बार भाई साहब फिर से उठ जाए, अब उसी सिचुएशन को फिर से अलग तरह से देखते हैं। अब मैं उनके साथ गलत तरह से बात कर रही हूं, गलत तरह से व्यवहार कर रही हूं, उनके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, मैं आपके साथ गलत बात कर रही हूं, आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे ना बॉल आपकी तरफ, करें हाथ, बॉल आपकी तरफ ऐसे आ रहा है, करें ऐसे आ रहा है ना, बॉल आपकी तरफ आ रहा है। एवरीबडी करो, जब कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है बॉल आपके लिए कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो हमारा माइंड कहता है मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आंसर आंसर, ये बॉल ऐसी क्यों आ रही है, ये बॉल ऐसी क्यों आ रही है। इमीडिएटली फर्स्ट थॉट में बोल देना मैंने फेंकी थी, मेरे फेंके बिना वो बॉल आ ही नहीं सकती। आपके जीवन में इतनी सारी अच्छी सारी बातें हैं, आज आप आराम से निश्चिंत 4 दिन यहां बैठे हो, इसके लिए भी बहुत अच्छी बॉल फेंक के आनी पड़ती है, ऐसे ही थोड़ी आ सकते हैं। किसको 4 दिन मिलता है निकालने के लिए, ऐसे सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए 4 दिन, आज के युग में अपने लिए सोचने के लिए 4 दिन, ये तो बहुत बड़ी लग्जरी है और ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी क्रिएट करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो ये बॉल आपके लिए कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है, एवरीबडी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, इस क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप में कन्वर्ट करो, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मेरा पूर्व कर्म, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से शक्ति बचती है, फुल स्टॉप से बैटरी चार्ज होती है। क्वेश्चन 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 करेंगे तो बैटरी क्या होती है, डाउन हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब यहां से ये अच्छी वाली नॉट अच्छी वाली बॉल वहां जा रही है, क्या ये उस बॉल को चेंज कर सकते हैं, क्या ये उस बॉल को चेंज कर सकते हैं जो यहां से इनके पास आ रही है? अब उनको ये पता चल गया ये मैंने भेजी थी वापस आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने गलत भेजी थी, अब गलत वाली वापस आ रही है, क्या ये उस आती हुई गलत बॉल को चेंज कर सकते हैं? ये अभी मैं ये फेंक दिया इधर, क्या ये आने वाली बॉल को चेंज कर सकते हैं? जी बॉल मैंने फेंकी है, जो बॉल मैंने फेंक दी वो तो इनके पास जानी है, वो बॉल इनके कंट्रोल में नहीं है। वो बॉल किसके कंट्रोल में थी? मेरे। वो बॉल इनके कंट्रोल में कब थी? जब इन्होंने फेंकी थी। हमेशा याद रखें, बॉल पे कंट्रोल कब है? बॉल पे कंट्रोल सिर्फ तब तक है जब तक वो आपके हाथ से निकली नहीं। सोच लिया, बॉल निकल गई, बोल दिया, बॉल निकल गई, व्यवहार कर दिया, बॉल निकल गई, उसके बाद एक घंटा पश्चाताप कर लो, बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है। अब इनके पास कौन सी पावर है? क्या ये आती हुई बॉल को चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो वापस आ रही है, वापस आने वाली बात को, बॉल को नहीं चेंज कर सकते। इनके साथ में कौन सी पावर है अभी? अब ये जैसा सोचेंगे, हाँ, न्यू बॉल, ही कैन चेंज द ओल्ड बॉल, ही हैज टोटल पावर ओवर द न्यू बॉल, विच मीन्स इनका अब का रिस्पॉन्स, जैसे ही मैंने इनको ये भेजा, ये मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, ये मेरे बारे में कैसा बोलेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, वो इनका नया कर्म है और वो टोटली इनके कंट्रोल में है। राइट और रॉन्ग? तो कौन से बॉल पे फोकस करना चाहिए, जो आ रही है या जो हम भेज रहे हैं? तो लिख लो, दूसरा क्या हमारे साथ कर रहा है उसका चिंतन नहीं करना, हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो मेरा नया कर्म है। अगर हम वो जो कर रहे हैं वो चिंतन किया, तो हमारा नया बॉल फिर से खराब हो गया। पहले ही खराब बॉल आ रहा था, मैंने भेजा था, अब नया वाला भी गलत चला गया, फिर से वो वापस आएगा। तो फोकस हमेशा कैसे होना चाहिए? मुझे कैसा सोचना है, मुझे कैसा बोलना है, मुझे कैसा करना है, इसीलिए व्हाइट 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 सर्कल, इसलिए व्हाइट सर्कल। और जब ये करना बहुत इजी हो जाता है, जब ये याद रहता है, ये मेरा किया हुआ ही वापस आया है, फिर बहुत इजी होता है। ऐसा लगता है वो कर रहे हैं तो मैं क्यों अच्छा करूं, वो मेरा किया वापस आ रहा है और मैं अच्छा कर्म करूं, क्योंकि अब हम जो करेंगे वो भी वापस आना ही है। इसीलिए सबको हमने क्या भेजना है, सबको क्या भेजना है, हमने दुआएं, दुआएं, ब्लेसिंग्स, बहुत सारी प्योर विशेस। अब याद रखें कि मैं आत्मा इस जिस क्षण इस शरीर को छोड़ूंगी, जो कि कभी भी हो सकता है, अब तो आयु का कुछ है ही नहीं, तो जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये मेरे कर्म सारे मेरे साथ जाने वाले हैं। तो जाने से पहले क्या कर लें, जाने से पहले क्या कर लें, जाने से पहले पहले किए हुए जो कर्म हैं, कुछ गलतियां हैं, उसको अभी भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज करें। वो कर्म तो हो गया, उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर हम अभी अच्छा कर्म कर दें तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। किसी को सॉरी बोलना है, बोल दीजिए, किसी को क्षमा करना है, कर दीजिए, वेट मत करिए वो आके सॉरी बोलेंगे तब हम क्षमा करेंगे, नहीं, उन्होंने जो किया वो उनके ऊपर रिकॉर्डेड, मैंने अगर ऐसे पकड़ कर रखा वो गुस्सा, वो नफरत, वो मेरा कर्म बन जाएगा। क्षमा करे, बिंदी लगाए उसको, उनको ब्लेसिंग्स भेजे जिन्होंने गलत किया है, क्षमा मांगे। अगर वो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई और आपने क्षमा नहीं मांगा, कार्मिक अकाउंट क्रिएटेड। तो अब जितने लोग मेरे रिश्तों में आज हैं, चाहे घर में हैं, चाहे वर्क प्लेस पे हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ भी हमारा अच्छा रिश्ता है, अच्छा मतलब काफी स्ट्रांग रिश्ता है, इनमें से किसी को भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, इनमें से हम किसी को भी पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम पहले मिल चुके हैं, अभी मिल रहे हैं और हम फिर से मिलेंगे। इट्स लाइक कल भी हम मिले थे, आज भी हम मिले हैं, ड्रेस सबने चेंज कर ली, रिश्ता तो वैसा ही चल रहा है जैसे कल था। अगर कल अच्छा था तो आज अच्छा होगा, अगर कल संघर्ष था तो आज संघर्ष बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा, अगली बार और बढ़ जाएगा। एवरी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कार्मिक अकाउंट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए अगर हम इस समय दुनिया को देखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक अकाउंट सामने आ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और विश्व के स्तर पर भी, दोनों, पर्सनल कार्मिक अकाउंट, ग्लोबल कार्मिक अकाउंट, दोनों कॉम्प्लिकेटेड है इस टाइम। तो इसीलिए चेक करें, कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर रहा है, ये मेरी ही फेंकी हुई बॉल वापस आ रही है, मेरे पास पावर है उसको अभी ठीक करने की। और कहीं भी कुछ इंटेंगलमेंट है, कहीं रस्सियां अटकी हुई हैं, कहीं गांठें बनी हुई हैं, यहां से जाने से पहले क्या करना है, क्या करना है, किसी को सॉरी बोलना है, यहीं से फोन कर देना, नीचे उतरते उतरते फिर मूड चेंज हो जाएगा, मैं क्यों बोलूं, उसने किया, मैं क्यों बोलूं, ये मैं बहुत सारे कर्मों को बदल देता है। बहुत सारे रिश्तों में जो भी उलझने आज हैं, वो इस बार की है ही नहीं, वो इस बार की है ही नहीं। तो वो कोई भी रिश्ता हो, वो कैसा भी व्यवहार हो, हमें याद रखना है वो मेरा कर्म वापस आ रहा है और अब मुझे उसको ठीक करना है। तो क्षमा किसको कर रहे हैं हम, हम एक्चुअली क्षमा किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, हम अपने आप को कर रहे हैं। हम दुआएं दूसरे को देते हैं लेकिन एक्चुअली वो दुआएं किसका कर्म बन रही है, वो मेरा कर्म बन रहे हैं। हम व्हाइट सर्कल उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो व्हाइट सर्कल मुझ आत्मा के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैं इनके लिए सोचू, ये ब्यूटिफुल प्योर आत्मा है, वो ब्यूटिफुल प्योर बने नहीं बने वो बाद में, पहले किसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो गई, वो ब्यूटिफुल प्योर आत्मा है, वो पावरफुल आत्मा है, वो आत्मा हर कर्म एक्यूरेट कर रही है, ये हमारी रिकॉर्डिंग बन रही है। तो हमें लग रहा है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली उसका फायदा किसको हो रहा है, हमारा हो रहा है, क्योंकि हमारी हर सोच, हमारा हर कर्म श्रेष्ठ बनता जा रहा है। तो सब कुछ करते हुए प्रायोरिटी याद रखनी है कि दो ही चीज परमानेंट है और वो है मेरा संस्कार, मेरा कर्म। किसी के लिए भी अपने संस्कार या कर्म को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। वो जब वापस आता है बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल आता है। राजयोग से आत्मा की शक्ति बढ़ाकर परमात्म शक्ति और शिक्षाओं को अपने साथ पकड़कर वापस आने वाले कार्मिक अकाउंट को भी पावरफुली चुक तो कर सकते हैं, और प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हैं उस पर फुल अटेंशन रहता है कि मुझे सारा दिन कैसा कर्म करना है। है किसी को सॉरी बोलना, किसी को माफ करना है, किस किस के पास है थोड़ा सा पेंडिंग कुछ, कब करेंगे, कब करेंगे, दान कब करना होता है, दान कब करना होता है, तुरंत दान महापुण्य। तो वो दान सिर्फ पैसे और चीजों का नहीं होता, वो दान कोई चीज पकड़ी हुई है उसका दान कर दो, कोई गुस्सा पकड़ा हुआ है उसका दान कर दो, क्षमा करना है उसका दान कर दो, अभी करो। अभी क्यों करो, क्योंकि अभी नहीं तो अगले सेकंड पता नहीं मैं या वो शरीर छोड़ दे, कार्मिक अकाउंट उलझ जाएगा, वो सारे हमारे बहुत क्लोज रिश्तों में आते हैं, क्लोज रिश्तों में आते हैं। बहुत कार्मिक अकाउंट बहुत सुंदर होते हैं, कई बात उलझे हुए होते हैं। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अभी हमारे को राइट कर्म क्रिएट करके कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक अकाउंट को भी क्या कर देना है, रिजॉल्व सॉर्ट आउट। ठीक है, कब करना है? लेकिन यहां से जाने से पहले, और जब आप यहां से जाएंगे, आप यहां से जाके नजदीक के सेंटर से कनेक्ट होकर फिर से एक बार 1-to-1 बहनों के साथ या भाइयों के साथ वहां बैठ के मेडिटेशन सीख के इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो यहाँ की जर्नी जो है ना क्लीन और क्लियर होने लग जाती है। आत्मा लाइट होकर जीती है, और जाती भी कैसे है, लाइट होकर जाती है। तो आगे भी कैसे शुरुआत होगी, लाइट और पावर के साथ होगी। ठीक है, एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे। हाँ जी, क्या लगता है, क्षमा करना कमजोरी है या क्षमा करना शक्ति है, या बातों को पकड़ के रखना शक्ति है, क्या शक्ति है? सबकी एक ही राय, जो करके सामने वाला क्या फील कर रहा है वो हमारा कर्म नहीं है। जो करके आपको लाइट फील होता है, मतलब आपका कुछ कर्जा चुकतो हो रहा है। किसी का कर्जा चुकतो होता है तो कैसा फील होता है, बोझ हल्का हो जाता है ना। अगर पकड़ के रखकर हल्का फील हो रहा है तो फिर पकड़ के रखना ठीक है। अगर क्षमा करके लाइट फील होता है तो क्षमा करना ठीक है। जो संस्कार कर्म से मन लाइट रहता है, मतलब वो हिसाब किताब क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। और जो कर्म से मन भारी रहता है तो वो हिसाब किताब क्या हो रहा है, उलझ रहा है। सिंपल तरीका, दूसरा क्या सोच रहा है वो हमें कुछ कनेक्शन नहीं है। दोनों की जर्नी अलग अलग है, बाकी दुनिया की जर्नी भी आपसे अलग अलग है। तो पूरी दुनिया भी आपको बोले ना नहीं क्षमा करो, आपको लाइट फील होता है ना, आप क्षमा करो। हमने मुस्कुरा के तो जाना ही नहीं, किसने आपको कहा मुस्कुरा के जाना है? मुस्कुरा के जाएंगे तो वहां तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे नहीं जाना है, फिजिकली दूर नहीं जाना है। हाँ तो बैठो शांति से वहां पर आराम से, तो वो तो अपने गाने गाएंगे। आपने ये वाली ब्लेसिंग उनको दी, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप शांत स्वरूप, बोलना थोड़ी है, मन में करना है वो। बोलेंगे तो और झगड़ा बढ़ जाएगा। आप करके देखना एक बार इसको, वो गुस्सा करेंगे ना, आप अंदर परमात्मा से कनेक्ट करके ना, शांति के सागर की सारी शक्तियां इनके पास हैं, ये बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा है, ये मेरे से स्नेह और सम्मान से बात करते हैं, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, मंत्र की तरह बोलते जाना अंदर विदाउट फुल स्टॉप कॉमा। पूरे 1.5 घंटे के बाद आप कह रहे हैं दोनों आत्माएं एक जैसी होनी चाहिए। दोनों आत्माएं कैसी होने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल अलग। वैसे ये दूसरा है कौन? अब पता चल गया दूसरा कौन है। बहुत इजी है प्रैक्टिस करना उनके साथ, है ना। चलो चलो सीधा होकर बैठे एक मिनट में। कोई भी गांठ है, वो गांठ सिर्फ एक सोच है, और गांठ को खोलना भी सिर्फ एक सोच है, जस्ट वन थॉट। उनको सामने लेकर आए, और उनसे कहें, बीती सो बीती, मैं आज बात को खत्म करती हूं। पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं, मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूं। आज से एक नया कार्मिक अकाउंट मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ दुआएं आपके लिए।
परमात्मा से शक्ति लेते हुए उन्हें शक्ति दें, अटेंशन अपने कर्म पर, उनके व्यवहार पर नहीं, अटेंशन अपने कर्म पर। इसी साइलेंस में उठेंगे। अब आपको अपने अपने हॉल में जाना है, बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे। एक मिनट अनाउंसमेंट सुनकर जाएं।